जीव गति का सिद्धांत और कर्म गति का सिद्धांत क्या है ये समझना चाहते हैं। गीता में आया है कि जिस समय मनुष्य देह का त्याग करता है, जैसी भावना उसके मन के अंतर्गत होती है उसी के अनुसार उसकी गति होती है, अर्थात उसको दूसरी देह की प्राप्ति होती है। तो यह जो भावना है, पूरे जन्म आपने जिस प्रकार के कर्म किए हैं और जिस प्रकार का भोग विलास किया है, जिस प्रकार का आपने स्वभाव बनाया है और जिस प्रकार की डिजायर्स आपने मन के अंदर पाली हैं, इन सब का जो कंबाइंड इफेक्ट होता है वो जिस दिशा में भी जाता है, मान लिया कोई तमोगुणी मनुष्य है या तमोगुणी जीव है, तो उसकी वृत्ति घोर स्वार्थी होती है और तरह तरह के अन्य लोगों को अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए कष्ट देकर अपनी इच्छा पूरी करता है। तो इस प्रकार का जो तमोगुणी जीव है वो दूसरों के दुख के प्रति सेंसिटिव नहीं होता। उसका एक ही लक्ष्य होता है कि मेरा स्वार्थ पूरा होना चाहिए। तो ऐसा जो जीव है ये पूरी तरह से जड़ बुद्धि जीव है। तो विचार कर लीजिए, अंतिम वासना यदि इसके अंदर पैदा होगी, अंतिम डिजायर पैदा होगी, तो उसके अंदर यही पैदा होगी। जैसा उसने स्वभाव बनाया है, जैसे उसने कर्म किए हैं, उसी के अनुसार उसके अंदर वासना भी अंतिम वक्त मन के अंदर उठेगी। उस समय उसका कोई इस पर वश नहीं चलता। जैसे कि आप जब रात्रि को सो जाते हो तो आपके अंदर स्वप्न की रचना होती है, क्योंकि एकदम से गहरी नींद नहीं आती, मन आपका चंचल होता है। तो हल्की नींद जब आती है तो आपको शरीर और संसार का होश नहीं रहता, शरीर की सारी एक्टिविटी बंद हो जाती है, लेकिन मन क्योंकि नहीं सोया है, मन के अंदर संकल्प चल रहे हैं, इसलिए आपके स्वभाव अनुसार, आपकी वासना अनुसार, आपकी इच्छा अनुसार स्वप्न की रचना तुरंत हो जाती है। उसमें आपको नई देह मिलती है, नया संसार मिलता है, लोग मिलते हैं, इस संसार में उस संसार में कोई अंतर नहीं होता। यहाँ तो मन बुद्धि के अधीन काम करता है, अर्थात आप निर्णय सोच समझ के कर लेते हो, इस ये जो कर्म करने जा रहा हूँ इसका क्या परिणाम निकलेगा, ये करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन स्वप्न में जैसे जैसे संकल्प उठते हैं वैसे वैसे रचना की बदलती चली जाती है। तो ठीक उसी प्रकार जिस समय इस देह की मौत होती है उस समय जीव पूरी तरह से मन के वशीभूत होता है, बुद्धि का निर्णय वहां कोई काम नहीं करता। तो उसके मन के अंदर जो भी संकल्प उठेंगे उसके अनुसार रचना उसकी तैयार हो जाएगी। तो जैसे स्वप्न की रचना तैयार हो रही है वैसे ही आपके नई देह, जिसको पुनर्जन्म कहते हैं, नई देह की रचना और नए संसार की रचना आपके लिए तुरंत ही आपके ही स्वभाव, आपके ही कर्मों फल के अनुसार बन जाती है। तो तमोगुणी जीव जो पूरी तरह से स्वार्थ के अधीन रहा वो मनुष्य जन्म का अधिकारी नहीं होता। उसने सोचने की जरूरत ही नहीं समझी तो मनुष्य जन्म उसको क्यों दिया जाएगा। देखो तो मनुष्य जन्म तो सोच समझ कर जीने के लिए है ना, क्या कर्तव्य है क्या कर्तव्य नहीं है, किस उद्देश्य के लिए मानव जन्म मिला है, सारी शिक्षा हम ग्रहण करते हैं। यदि किसी ने शिक्षा ग्रहण नहीं करी और वासना के वशीभूत होकर यदि ऐसे ही जीता रहा हो तो मनुष्य जन्म भी उससे छिन जाता है, उसकी गति क्या होती है, फिर वो पशु पक्षी की योनि में चला जाता है। तो महाराज जी की वाणी कह भी रही है, कर्म गति अपार है जीव नहीं छूटन पाए, मंगत जैसी भावना ऐसे रूप समाए। जिस भावना को लेकर उसने देह का त्याग किया है उसी भावना के अनुसार उसको नए रूप की अर्थात नए शरीर की प्राप्ति होगी। लेकिन ध्यान देने की बात यहां पर यह है, इस सिद्धांत को केवल सीखने से होगा क्या? ध्यान देने की बात यह है कि कर्म गति अपार है जीव नहीं छूटन पाए, ध्यान तो यहां देना है। ये गुरु कह क्या रहा है, वाणी क्या कह रही है कि देह तो छूट गई इसकी, देह मरने के बाद तो देह तो छूट गई लेकिन जीव नहीं छूटा। तो जीव किस चीज के बंधन में है, देह छूटने के पश्चात भी जीव किस चीज के बंधन में है? ना उसकी इंद्रियां छूटी, क्योंकि इंद्रियां जो हैं मौत के समय मन के अंदर लीन हो जाती हैं, और मन जो है वो प्राण में लीन हो जाता है, प्राण जो है वो कुंडलनी में लीन हो जाता है। तो ये जो ईश्वर शक्ति है जिसको हम कुंडलनी कह रहे हैं ये जीव को नहीं छोड़ती, जीव उस ईश्वर के साथ ही निवास करता है। जिस समय ये चोला छूटता है उस समय जीव देह छोड़कर ईश्वर के साथ ही निवास करता है, और इस जीव का जो सूक्ष्म शरीर है जिसको हम मन कह रहे हैं, सारे संकल्प सारे कर्मफल सारी कर्म गति तो मन के अंदर सुरक्षित है इसकी। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है ये भी जीव का जीव के संग ही सुरक्षित। तो जीव नहीं छूटन पाए, किससे नहीं छूट पा रहा है, मन से, अपने सूक्ष्म शरीर से नहीं छूट पाया है। स्थूल शरीर से तो छूट गया, ऐसी कोई सुसाइड कर ले तो स्थूल शरीर से तो छूट जाएगा लेकिन मन से क्या वो छूट पाएगा? तो सुसाइड करने का मतलब ही कुछ नहीं बना, क्योंकि मन तो फिर देह तैयार कर लेगा और जो कर्मफल आपने भोगने थे रह गए वो फिर आपको भोगने पड़ेंगे, उससे भी नहीं बच सकते आप। तो जीव इस मन से छूटेगा लेकिन जाएगा कहां? देह से छूटने के बाद जीव गया कहां? जीव कहीं नहीं गया, जीव कुंडलनी के अंदर ही सुरक्षित है जिसको महाप्राण कहते हैं। तो ये जो प्राण है हमारा जिसको प्राण पान श्वास का आना जाना ये इस महाप्राण से ही उदय होता है, महाप्राण में ही ये लीन हो जाता है। जिसको वाणी कह भी रही है देखो, नाभ कमल है अचरज थाना, जामे वसया श्री भगवाना, जहां से उपजे श्वास का थंबा, सुरती खेले खेल अचंबा। श्रुति कहते हैं बुद्धि को। तो ये जीव इस आश्चर्यजनक खेल को खेलता है, देखता है इसका खेल, लेकिन ये जो प्राण उदय हुआ है ये किसमें से हुआ है? नाभि कमल क्या है? ये नाभि में कुंडलनी, यहां जब नाभि कमल खुलता है साधना करते करते तो उस समय ये कुंडलनी की ऊपर की यात्रा शुरू होती है, जिसको महाज कहते हैं कि प्रेमी दसवां जो द्वार है ये कुंडलनी का मूल स्थान है, यहां से कुंडलनी देह में प्रवेश करती है और यहीं आकर वो अपने मूल स्थान पर एकाग्र हो जाती है। तो जीव और जीव का मन या जीव का सूक्ष्म शरीर इस कुंडली में ही सुरक्षित रहता है, उसका प्राण भी इसी कुंडली में सुरक्षित रहता है। तो सब कुछ तो सुरक्षित है, तो उस कुंडली शक्ति से ही आपका देह का संचालन हो रहा है। वाणी कह रही है कि रोम रोम में रमत स्वामी, राम नाम भज अंतरयामी, कि रोम रोम में वो स्वामी रम रहा है। तुम्हारी कह रहे प्रेमी तेरे रोम रोम में ईश्वर शक्ति काम कर रही है नहीं कर रही है? तो ईश्वर शक्ति या प्रभु बात एक ही है, या कुंडलनी कोई भेद नहीं। तो कुंडलनी शक्ति या ये कहें प्रभु शक्ति ही तेरे रोम रोम का संचालन कर रही है, ये जीवित इसको रखे हुए हैं। हम कंफ्यूज्ड हैं कि मेरे करने से हो रहा है, यदि हमारे करने से होता तो महाजी का शरीर कैसे चलता, क्या खुराक थी इनकी? विचार करके देखो कोई मनुष्य जीवित रह सकता है कि दिन भर पानी ही ना पिए? एक वक्त चाय के साथ जो पानी चला गया चला गया, अन्न भी ना खाए, और कितनी घोर ठंड में, कितने घोर जंगलों में, और क्या उनकी स्पीड थी चलने की, जैसे हवा चल रही। सारे प्रेमी पीछे रह जाते थे, महाजी जो है जिसकी खुराक ना के बराबर थी, महाजी कहते थे प्रेमी ये केवल पर्दा रखा हुआ है, लेकिन योगी तो वायु पर भी रह सकता है। देखिए तो कौन सी शक्ति है उस देह के अंदर जो उसको सुरक्षित रखे हुए। तो गुरु के शरीर को देख के, गुरु की एक्टिविटी को देख के ये सिद्ध हो जाता है कि ये अन्य शक्ति नहीं है, ये मेरी करने से देह टिकी हुई है, ये उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की शक्ति से ये देह टिकी हुई है। इसमें वो शक्ति क्रियाशील नजर आ रही है। एक बार एक प्रेमी जो कनाडा में आजकल रह रहे हैं, जो इसे समता दर्पण के संपादक भी थे, भाटिया जी, रतनलाल भाटिया, एक बार मेरी बात हुई उनसे दिल्ली में, तो कह रहे थे कि मेरे मन के अंदर महाजी के का एक करिश्मा देखने की उठी थी बात। तो एक दिन महाजी बैठे हुए थे, तो अब गुरु तो शिष्य के मन की बात जान ही लेता है, इसके लिए तो कोई कठिन है नहीं। तो महाजी ने अपने पैर फैला दिए, तो मैंने उनके पैर जो है वो हाथ से दबाना शुरू कर दिए। लेकिन मैं क्या देखता हूं, एक अचंभा कि पूरा पैर उनका ग्लो कर रहा है, चमक रहा है, जैसे ट्रांसपेरेंट होता ना, अंदर से उसके तेज चमक रहा है पैर के अंदर। मैं देख के दंग रह गया कि ये सब कुछ क्या है, ये हाड़ मास का पैर समझ रहे हैं, ये क्या शक्ति चमक रही है इसके अंदर। अब देखिए गुरु का ये तो गुरु की कृपा थी शिष्य के ऊपर कि वो गुरु को जो देह समझ रहा है वो उसकी इच्छा है दी गुरु के बारे में कुछ जानने की, तो देख लीजिए क्या है। तो सारा खेल तो उस ईश्वरीय शक्ति का चल रहा है, इस सृष्टि में भी, मेरी देह में भी, और मैं अहंकारी हूं। क्यों अहंकारी हूं? कि मैं अपने आप को देह समझ रहा हूं, और इस एक गलती के कारण जो कर्म भी ईश्वर देह से करवा रहा है, या यूं कह लें जो कर्म भी ईश्वर मेरी देह को यूज करके कर रहा है, उसको मैं ईश्वर की करनी ना समझकर, उसको मैं प्रारब्ध ना समझकर, मैं कहता हूं मैं कर रहा हूं। और इस एक गलती के कारण कितनी भयंकर मुझे पीड़ा सहन करनी पड़ती है, कितनी भयंकर सजा भुगतनी पड़ती है, कि यदि मैं कर रहा हूं तो मैं अपनी डिजायर के, इच्छा के वशीभूत होकर कर रहा हूं। अब उस करनी का फल अब मैंने भुगतना है, क्योंकि मैंने किया है, मेरी भावना यह है कि मैंने किया है। तो केवल इस भावना के कारण तुझको उस कर्म की सजा भी, उस कर्म का सुख दुख जो भी परिणाम है वो तुझे भुगतता है और उसके संस्कार तेरे मन के अंदर नए तैयार हो जाते हैं। नए संस्कार तू तैयार कर लेता है। पुराने संस्कारों के कारण तुझको ये देह मिली और ये कर्म मिले करने को, लेकिन अब तूने नए संस्कार तैयार कर लिए वैसे ही। अब आगे का तेरा ये फिर आगे नया वर्ष तैयार करेंगे। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कर्म गति अपार है, जीव नहीं छूटन पाए। ये कर्मों का जो सिलसिला है ये लिमिटलेस है, इसकी कोई गिनती नहीं, कोई शुमार नहीं। आपके हजार जन्म भी हो जाएं तो आपके जो कर्म बचे हुए हैं वो आप भोग नहीं पाओगे, नए तैयार कर लोगे। तो इसलिए माही कह रहे हैं कि प्रेमी ये कर्तापन मूल माया है। जीव का अज्ञान ही यह है कि मैं करता हूं, क्योंकि जीव कभी भी बिना देह के रहता नहीं है। स्वतंत्र हवा में जीव नहीं घूमता, देह सहित ही रहता है। इसीलिए संसारियों के बीच में पलकर इसके अंदर यह होश ही नहीं आता कि मैं देह नहीं हूं। यहां आके पता लगता है कि इस मनुष्य को गुरु की जरूरत क्यों है। केवल गुरु शक्ति ऐसी है, गुरु कृपा ऐसी है, गुरु सत्ता ऐसी है जो आपको इस मोह से, इस मद से, इस नशे से मुक्त कर सकती है। कौन सा नशा? कि मैं देह। तभी आपको यह बात समझ में आएगी कि जब देह मर गई तो फिर मेरा बंधन कौन सा बचा? मुझे तो मुक्त हो जाना चाहिए। यदि मैं जीव हूं भी तो मुझको मुक्त हो जाना चाहिए। तो ये विज्ञान बता रहा है शास्त्रों का, चाहे वो महाराज जी की वाणी के रूप में हो, चाहे वो गीता के श्लोक के रूप में हो, या अन्य किसी ऋषि की वाणी हो। वो ये विज्ञान बता रहा है कि स्थूल देह नष्ट हो जाती है, लेकिन सूक्ष्म देह, जिसको हम मन कहते हैं, जिसको हम अंतःकरण कहते हैं, वो जीव के संग ही रहता है। और वही अंतःकरण, वही मन उसको नई देह में प्राप्त हो जाता है। तो अब बताइए, यदि आपने संस्कार बदलने हैं, आपने यदि स्वभाव बदलना है, तो पशु योनि में आप ये काम कर पाओगे? पशु योनि में कोई निर्णय काम नहीं करता आपका, वो इंस्टिंक्टिव लाइफ होती है। जैसी अंदर से प्रेरणा पैदा हुई वैसे पशु काम करना शुरू कर देता है। इसलिए कर्म का कर्ता भी पशु को नहीं कहा जाता। एक शेर जिंदगी भर मार मार के खाता रहता है, कभी सुना है शेर को पाप लगता है मारने का? सुना है कभी आप? और आप एक बिल्ली भी मार के खा जाओगे तो पाप लगेगा, क्योंकि आपको बुद्धि दी गई है, आपने सोच समझकर कर्म करना है। तो वो सोच समझ क्या है? वो सही सोच समझ जो है उसी को ही हम शास्त्र कहते हैं, उसी को ही हम रेवलेशन कहते हैं। जैसे वाणी क्या हुई है? रिवील हुई है, ये प्रकट हुई है। वाणी लिखी नहीं गई। महाराज की वाणी जब अवतरित होती थी तो समाधि में होते थे, भगत जी सुनते थे, वही लिखते थे। और महाराज जी सुबह को फिर सुनते थे भगत जी से, वो प्रेमी सुना, प्रभु की क्या कृपा प्रकट हुई। तो अब बताइए कि ये जो ज्ञान है जो वाणी के रूप में आ रहा है, ये सीधा ईश्वर का मार्गदर्शन है मनुष्य के लिए, डायरेक्ट। इसके बीच में कोई भी किसी माइंड का, किसी बुद्धि का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसके अंदर। तो यहां बुद्धि का प्रयोग नहीं हुआ है, सीधी ईश्वर की आवाज वाणी के रूप में आ रही है। इस रचना को ही हम शास्त्र कह देते हैं, इस रचना को भी हम जो है वो वाणी कहते हैं, सत्पुरुष के वचन कह देते हैं। तो ये जो डायरेक्ट सत्पुरुष के वचन है रेवलेशन के रूप में, ये ज्ञान है जो मनुष्य को सीखना चाहिए। तो अध्यात्म ज्ञान उसको नहीं कहते कि तूने बायोलॉजी से पीएचडी की है, केमिस्ट्री से पीएचडी की है, या एडमिनिस्ट्रेशन में पीएचडी की है, क्या किया है तूने, उसका कोई महत्व नहीं है। वो सांसारिक व्यवहार है। मनुष्य के लिए ज्ञान ये है। तो इसीलिए यदि मनुष्य इस ज्ञान को नहीं सीखता और संसारियों का ज्ञान सीखकर अपना जीवन चलाता है, तो इसीलिए शास्त्रों में उसको पशु कहा गया है। कोई भेद किया गया उसमें? बिना विवेक मानुष जो होई, पशु समान जीवन सुख होई। ये ज्ञान जिसने नहीं सीखा, इसी इस ज्ञान का नाम ही विवेक है कि सही समझ जिंदगी की क्या है और कैसे जीना चाहिए, किस उद्देश्य से जीना चाहिए, ये सारा ज्ञान है, इसी का नाम है विवेक। तो इस विवेक के बिना यदि कोई मनुष्य जीवन जी रहा है, संसारियों की दृष्टि में चाहे वो सफल जीवन है चाहे वो विफल जीवन है, लेकिन सत्पुरुषों की दृष्टि में वो पूरा का पूरा जीवन विफल जीवन है। बिना विवेक मानुष जो हुई, पशु समान जीवन सुख हो। उसने सोच समझ कर जीवन व्यतीत ही नहीं किया। नियम तो घरों में भी होते हैं, हम कोई चीज लाइक करते हैं, कोई चीज नहीं लाइक करते। कोई व्रत देखो 100 तरीके से हिंदुस्तान में मनाए जाते हैं। घर का रहन सहन देखो 100 तरीके से, 1000 तरीके से लोग रहते हैं। हर मामले में इतनी वैरायटीज हैं, जो जिसका आदि है उसी के अनुसार उसने नियम बना रखे हैं। तो इसमें क्या ठीक है क्या गलत है, आप क्या कहोगे? लेकिन शास्त्र जब पढ़ोगे, चाहे वो वैदिक काल में प्रकट हुआ हो वेद के रूप में, चाहे वो आज के युग में महाजी के वाणी के रूप में प्रकट हुआ हो, वहां एक ही चीज नजर आएगी सर, उसमें कोई चीज नहीं। तो इसका मतलब जीव विज्ञान वो नहीं है जिसको हम बायोलॉजी कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं, वो शरीर विज्ञान है। उसका नाम जीव विज्ञान गलत रखा गया है। यदि किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से पूछो तो कहेंगे इसका हिंदी इन्होंने गलत बनाई है, ये जीव विज्ञान नहीं है, ये तो शरीर विज्ञान है। जीव विज्ञान तो शास्त्रों में लिखा होता है, जो मेरा विज्ञान है। वैज्ञानिकों के लिए मैं देह हूं, सत्पुरुषों के लिए मैं जीव हूं। ये बहुत बड़ा भेद दोनों की दृष्टि में। इसलिए सत्पुरुष को आत्मा कहा जाता है और वैज्ञानिक को शरीर कहा जाता है। देखो ना, आज भी दुनिया में, सारी दुनिया में यदि जितने भी अवतार हुए हैं, लोग अवतार को क्या कहते हैं? मोहम्मद साहब को अल्लाह कहते नहीं कहते? ईसा मसीह को गॉड कहते ही नहीं कहते? जितने भी ऋषि हुए, राम को, कृष्ण को ईश्वर कहते नहीं कहते? क्योंकि वो अपने स्वरूप में स्थित होकर बात कर रहे हैं, हम देह बनकर बात कर रहे हैं। तो कितना बड़ा अंतर है। जब अपने स्वरूप में स्थित होकर बात कर रहे हैं तो हम, हमारी सारी दुनिया के लिए वो पूज्य, और हम देह बनकर बात कर रहे हैं तो लोग हमको क्यों चाहते हैं? उनकी मनोकामना पूरी होगी हमारे द्वारा, इसलिए चाहते हैं। चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे कोई भी। कोई मर जाता है तो घर में सब रोते हैं, इसी बात से रोते हैं, हाँ अब ये काम कौन करेगा, वो ऐसा करते थे, वो ऐसा करते थे। आपकी करनी को याद करके रोते हैं, उस करनी से जो आपको उनको फायदा होता था। और यदि कोई राक्षस मर जाए, राक्षस वृत्ति का व्यक्ति मर जाए जो सबको दुख देता हो, कहेंगे बड़ा अच्छा हुआ मर गया है। तो वो मनुष्य के लिए रो रहे हैं या उनसे जो उनको सुख मिल रहा था उसके लिए रो रहे हैं? तो ये स्वार्थ की दुनिया है। तो स्वार्थ की दुनिया अंधी दुनिया होती है। अंधी क्यों? उसको ना अपने बारे में पता है, ना ईश्वर के बारे में पता है, ना शास्त्रों के बारे में पता है। शास्त्र हमारी आंख है, हमारी विचार की आंख है। तो जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तब वहां बार बार एक ही बात आती है जीव की। महाराज जी की सारी वाणी पढ़ो, देखो जीव के हजारों जगह आया होगा वो वहां पर, और मनुष्य का प्रयोग कहीं कहीं किया होगा वाणी में, कहीं मानव करके किया होगा, कहीं मानुष करके किया होगा, कहीं कहीं किया होगा, क्योंकि सारा संदेश तो वो जीव को दे रहे हैं और यही समझाना है उन्हें। इसलिए यदि हमने उसको शब्द पढ़ लिया, मान लिया जीव पढ़ा और अर्थ कर लिया ये मनुष्य की बात कर रहे हैं, बस हो गया गलत, सारी वाणी का अर्थ ही गलत हो जाएगा। और किसी भी संसारी व्यक्ति को दे दो पढ़ने के लिए, वो जीव पढ़ेगा लेकिन कहेगा मनुष्य। तो उसकी है ही मानव बुद्धि ना, उसकी मानव बुद्धि है। तो इसीलिए ऋषियों की बात समझ में नहीं आती। अब गीता देखो ना कि कितने लोग श्रद्धा रखते हैं गीता के ऊपर, और गीता की एक ही बात जो दूसरे अध्याय में, जहां से ज्ञान शुरू होता है गीता का, वहीं लिखा हुआ है कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, देखो जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, उसी प्रकार जीव पुरानी देह त्याग कर नई धारण करता है। अब गीता की इस बात को, एक बार यहां पर कैंप चल रहा था तो मैंने, जब पुनर्जन्म का सिद्धांत मेरा विषय आया, तो मैंने एक प्रश्न पूछा जो भी कैंप के स्टूडेंट्स थे कि गीता पर किसको विश्वास है। विश्वास का मतलब मैंने पूछा कि गीता में जो लिखा है ठीक लिखा है, कृष्ण का संदेश है, तो गीता पर किसको विश्वास है कि गीता में जो लिखा है ठीक लिखा है। सबने हाथ खड़ा कर दिया। अब ये भारत के वातावरण की देन है, भारत के संस्कारों की देन है कि हमने गीता पढ़ी नहीं है, लेकिन विश्वास है हमारे अंदर, श्रद्धा है कि इसमें जो लिखा है वो ठीक लिखा है। फिर मैंने दूसरा प्रश्न किया, मैंने कि ये बताइए कि आप में से किस किस को विश्वास है कि मनुष्य का पुनर्जन्म होता है। तो 60% लोगों ने या 70% लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया और 30% लोगों ने हाथ खड़ा नहीं किया, डाउट में थे। तो मैंने फिर तीसरा प्रश्न किया, मैंने कहा ये बताओ जिनको ये विश्वास नहीं है कि मनुष्य का पुनर्जन्म होता है, उनसे मैं एक तीसरा प्रश्न पूछता हूं, केवल वही उत्तर दें। मैंने कहा ये बताओ मनुष्य को अपने कर्म का फल मिलता है या नहीं मिलता है। मनुष्य को अपने कर्म का फल जरूर मिलता है, इसका आप में से किस किस को विश्वास है। जिन्होंने हाथ खड़े नहीं किए थे उनके लिए प्रश्न था ये। तो उनमें से शायद एक को छोड़ के बाकी सबने हाथ खड़े कर दिए कि हमें विश्वास है कि मनुष्य को कर्म का फल जरूरी मिलता है। अच्छा, तो मैंने कहा अब मैं एक घटना आपके सामने रखता हूं, इस पर जरा विचार करो फिर मुझे उत्तर देना। मैंने कहा एक सैनिक है, वो बॉर्डर पर देश की रक्षा करते करते शहीद हो जाता है, ये उसका अच्छा कर्म है या बुरा कर्म है। सबने कह दिया बड़ा अच्छा कर्म है। मैंने कहा अच्छा कर्म किया है उसने तो इसका फल सुखरूप उसको मिलना चाहिए ना। अब बताइए देह तो उसको, वो तो मर गया, अब इसका फल वो कहां भोगेगा। तो उसमें से कुछ बोल पड़े, नए शरीर में भोगेगा। एकदम से जो एक स्वाभाविक आवाज निकली कि नए शरीर में भोगेगा। मैंने कहा अभी तो आप कह रहे हो कि पुनर्जन्म होता नहीं है उसका, अब कह रहे हो नए शरीर में भोगेगा, तो नए शरीर में भोगेगा तो नया जन्म होगा है नहीं होगा उसका? फिर मैंने जो सिद्धांत था पूरा शास्त्र के आधार पर वो विषय लिया, पर्पस उसका यही था कि हम मानते हैं हम नहीं मानते इसका कोई वैल्यू नहीं है, विज्ञान क्या कह रहा है आपको वो मानना ही पड़ेगा, आपके मानने ना मानने से कोई ट्रुथ नहीं बदल जाएगा। तो अब बताइए गीता में प्रारंभ में ही ये लिखा हुआ है कि मनुष्य जिस प्रकार प्राणी पुराने कपड़े त्याग कर नए धारण करता है उसी प्रकार जीव प्राणी देह त्याग कर नई धारण कर लेता है, इसी को पुनर्जन्म का सिद्धांत कहते हैं, इसी को ही गति कहते हैं। तो एक देह गई जीव की तो दूसरी देह मिल गई, तो यदि आपने इस जन्म का निर्णय नहीं किया ठीक ठीक तो अगले जन्म में फिर फंसेंगे आप। तो इसीलिए शास्त्र हमको क्या सिखा रहे हैं, नानक दुखिया कुल संसार, उपनिषद कह रहा है दुखम सर्वम अनुस्मृत्य काम भोगान निवर्तयेत, मत भूलो कि सब कुछ दुख ही है। सहजोबाई भी कह रही हैं कोई तो तन मन दुखी कोई चित्त उदास एक एक दुख सवन को सुखी संत का दास। वास्तव में गुरु का शिष्य है वही जानता है कि सुख क्या होता है। यहां सुख का मतलब इंद्रिय भोगों का सुख नहीं है, यहां सुख का मतलब है जहां ये जीव मानसिक बेचैनी से परमानेंट मुक्त हो जाता है उसको सुख कह रहे हैं, जिसको हम आनंद कह देते हैं, जिसको हम शांति कहते हैं। तो जीते जी जिसने अपनी गति कर ली, महाजी कह रहे हैं, अर्थात मन के संस्कार उसने भस्म कर लिए, तो मन के अंदर जब कर्म वृत्ति उठना बंद हो गई, मन एक तरह से निर्स्वभाव हो गया, निर्वास हो गया, तो उस मन को फिर क्या कहते हैं, निर्मल मन। वासना रहित मन को कहते हैं निर्मल मन। तो निर्मल मन जिसका होता है तो ये जीव फिर ईश्वर के साथ एक हो जाता है। तो जीव को बोध हो जाता है कि कितने जन्मों से मैं देह और मन के बंधन में जीता रहा, कितना परेशान रहा। देखो जीव से वास्तव में मन और देह अलग है, इसलिए ये छूट जाती है, निर्मल हो जाती है, और जीव ईश्वर का अंश है। अर्थात जीव यदि मन के चंगुल में ना फंसे तो जीव अपने आप में परमात्मा है, अपने आप में आनंद स्वरूप है। तो इसीलिए सारी साधना, सारा गुरु का ज्ञान, सारा गुरु का मार्गदर्शन इसी वास्ते है कि तू पहले अपने आप को समझ, तू जीव है या क्या, जो जीवात्मा है, और जीवात्मा किसके बंधन में है, मन और तन के बंधन में है, मन और तन करके संसार के बंधन में। तो ये जन्म तूने इस प्रकार का व्यतीत करना है कि धीरे धीरे तेरी कर्मों के प्रति आसक्ति कम हो और कर्म फल के प्रति आसक्ति कम हो, सारा मार्ग यही तो है। माई कहते प्रेमी, खुद कहा था माँ जी ने, ये इनके अनुभव की बात है, जब तक मन में एक इच्छा भी बाकी है आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। इसका मतलब जीव ईश्वर के साथ निर्वास होकर ही एक हो सकता है। तो सारा आध्यात्मिक प्रोग्राम क्या हुआ, सीधी सी बात है कि सारी जो स्कीम है गुरु की या शास्त्रों की क्या है कि ऐसी वे ऑफ लाइफ आपकी बनाई जाए, ऐसा जीवन जीने का तरीका आपको सिखाया जाए कि धीरे 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 आप इच्छाओं से वासनाओं से मुक्त होते रहो, इसी को दूसरे रूप में कहते हैं, जो तमोगुणी जीव है वो पहले रजोगुणी होगा, रजोगुणी जीव है कर्मों का शोधन करेगा तो फिर वो सतोगुणी हो जाएगा, और सतोगुणी होने के बाद उसकी स्थिति ऐसी आएगी कि वो निर्गुण हो जाएगा। तो जो तमोगुणी जीव मनुष्य है आज के दिन, उसकी यात्रा कितनी लंबी है विचार करके देखो। तो इसीलिए हम कम से कम इतनी तैयारी तो कर सकते हैं कि भले ही हम तमोगुणी पैदा हुए हों, लेकिन मैं सतोगुणी स्वभाव लेकर इस संसार से विदा हो सकता हूं, इतनी प्रगति मेरी हो सकती है। और सतोगुणी जीव की अवस्था क्या होती है वो महाराज जी ने समता विलास में लिख दी। बुद्धि की जो सात अवस्थाएं लिखी है महाराज जी ने समता विलास में, उसमें से चार अंधकार की अवस्थाएं हैं और तीन प्रकाश की अवस्थाएं हैं। तो उसमें से प्रकाश की जो पहली अवस्था है वो सतोगुणी जीव की अवस्था है। आप पढ़कर देखिए कि आप वो बन सकते हो, इसी जन्म में बन सकते हो। तो सतोगुणी हालत में जो देह त्याग करोगे आप, तो आपका जो मन यदि सतोगुणी है, सतोगुणी संस्कार है, और सतोगुणी जो जीव बनेगा उसके कर्म भी तो शुद्ध होंगे ना, उसके जब कर्म शुद्ध किए होंगे तो संस्कार भी तो शुद्ध होंगे उसके, उसकी इच्छाएं भी तो वैसी बनेंगी। जैसे भोगी आदमी होता रहा, जिससे संबंध बनाएगा उसके बारे में सोचेगा ये मेरे काम आएगा, ये इससे मुझे वक्त में हेल्प मिलेगी, मुसीबत पड़ गई तो उसको पैसे भी मिल जाएंगे, मतलब स्वार्थ भावना से संबंध बनाएगा। लेकिन जो सतोगुणी जीव होता है वो परमार्थ ही सोचता है कि मैं इसके किस दुख में काम आ सकता हूं। यदि वो किसी के दुख में काम आ जाए तो अपना भाग्य समझता है, प्रभु तूने एक सेवा करने का मौका बख्शा कि मैं किसी का दुख दूर करने लायक बना, ये आपकी कृपा है। तो वो त्याग में खुश होता है और रजोगुणी तमोगुणी जीव भोग में खुश होता है, और दोनों की वृत्ति में ये अंतर होता है। तो इसीलिए उसका जीवन जो है, जो गृहस्थ जीवन हो चाहे सामाजिक जीवन हो चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, उसका त्यागी जीवन होता है। उसके जीवन से पता लगेगा इसके अंदर त्याग भाव है। दूसरे भी उसके पास आते हैं इसलिए कि मुझको ठीक राय देगा, कहां से मेरी कैसे मुसीबत दूर हो सकती है उसका तरकीब बताएगा, उसका रास्ता बताएगा। तो ऐसे लोग व्यक्तियों के पास लोग खुद आते हैं कि ये सतोगुणी स्वभाव का ईश्वर विश्वासी व्यक्ति है, और सारी दुनिया सतोगुणी लोगों को ही पसंद करती है, खुद चाहे कैसे भी हो, तमोगुणी रजोगुणी क्यों ना हो, लेकिन पसंद वो सतोगुणी स्वभाव के व्यक्ति को ही करेंगे, खुद बनेंगे नहीं वैसे, क्योंकि सोचने की आदत ही नहीं है। जानते ही नहीं कि मैं जो जिस सोच के साथ कर्म कर रहा हूं, मुझे मेरी क्या दुर्गति होने वाली है आगे चलकर, होश ही नहीं है। तो इसलिए सारी जो अध्यात्म विद्या है वो आपको कर्म गति सिखा रही है कि किस प्रकार के कर्म तो इस जीवन में आके कर, ताकि जिस समय तेरी देह की मृत्यु हो उस समय तू स्वस्थ मन लेकर, सतोगुणी मन लेकर इस संसार से विदा हो। तो यदि तूने सतोगुणी कर्म किए, सतोगुणी स्वभाव बनाया, तो फिर सतोगुणी स्वभाव की सीधी सी पहचान है, उसके अंदर एक ही इच्छा उठती है, जो प्राइम उसकी इच्छा होगी ना, सतोगुणी जीव की यह पहचान है, उसकी जो प्राइम इच्छा होती है वो होती है ईश्वर को जानने की। उसको ये हर समय याद रहता है कि मानुष जन्म सफल होवे, जब प्रभु दाता चित आए, प्रभु के सिमरन कारने ये दुर्लभ जीवन पाए। तो वो व्यक्ति जो प्रभु की याद करते हुए प्रभु के लिए जीना चाहता था, प्रभु की प्राप्ति के लिए जीना चाहता था, तो जिस समय उसकी मृत्यु होने वाली होगी, देह का होश तो सबसे पहले गायब होगा ही उसका, लेकिन मन में प्रभु के ही संकल्प उठेंगे उसके, वही सपने देखेगा वो। इसलिए महाराज जी कहते थे, प्रेमी मरते वक्त गुरु साथ नहीं छोड़ता, शिष्य के संग ही रहता है, वही उसकी रक्षा करता है। क्योंकि वो ईश्वर है ना। तो जीव ने ईश्वर के संग ही रहना है इस देह की मौत के वक्त, और कोई साथी नहीं है इसका। तो अब बताइए वो ईश्वर उसको कैसी देह देगा, और उस देह के साथ साथ जो कुछ भी उसने करनी की है उसकी रक्षा भी करेगा। और जो लक्ष्य उसको यहां नहीं मिल सका, अपूर्ण रह गया, उसके लिए वो साधन भी देगा। तो अर्जुन प्रश्न करता है ना कृष्ण से, हे वासुदेव, कोई मनुष्य त्याग का रास्ता अपनाता है, ईश्वर भक्ति का रास्ता अपनाता है, लेकिन बीच में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या उसकी सारी जो करनी है ये बादलों की तरह छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाती? तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूं, अर्थात उसकी योगक्षेम की रक्षा मैं करता हूं। इसका मतलब हुआ कि जो कुछ भी कर लिया है उसकी रक्षा प्रभु करेंगे, और वो मार्ग उसका पूरा हो जाए उसके लिए साधन वो अगली देह में उसको प्रदान करेंगे। तो बताइए कि इस जन्म में मैं यदि ईश्वर भक्ति के लिए जीता तो लोगों का भी प्रिय रहता, मेरे मन में भी शांति रहती। क्योंकि आप क्लेश क्यों होता है, क्योंकि इच्छाएं बहुत हैं। बच्चे से पूरी नहीं इच्छा हुई तब आप क्लेश करते हो, समाज से पूरी नहीं हुई तब आप क्लेश करते हो, सारा क्लेश इसी बात का। तो जो ईश्वर के लिए जीता है वो तो, जैसे यहां आप सादा आहार कर रहे हो, सादा खा के भी खुश रहते हो, यहां क्या तकलीफ है खाने में बताइए? बात करते हो कैसे प्रेम से, ईश्वर से संबंधित बातें होती हैं, उसी संबंधित पढ़ने की इच्छा होती है, उसी प्रभु की याद करने की इच्छा होती है। यहां का जो तपोभूमि का वातावरण है ये आपको प्रेरित करता नहीं करता इस बात के लिए? यही इस स्थान की देन है। महाराज ने इसीलिए ये स्थान तैयार करवाया था कि यहां जो व्यक्ति आएगा, यहां का वातावरण ही इस प्रकार का है कि उसके अंदर इसी काम को करने के लिए प्रेरणा जागृत होगी। तो इसी प्रकार जब मैं अपना यह स्वभाव बना लेता हूं इस प्रकार के जीवन का, तो मेरी जब देह की मृत्यु होती है तो मेरा जो मन है उसमें यही संस्कार, सतोगुणी संस्कार बचे रहते हैं, और इन्हीं संस्कार के अनुसार मुझको अगली देह, अगला समाज, वहां पर गुरु ज्ञान सब प्राप्त होता है, और एक दिन मैं ईश्वर से मिलने के लिए पात्र बन जाता हूं। यह है वो कर्म गति अपार है, जीव नहीं छूटन पाए, मंगत जैसी कामना ऐसे रूप समाए। ओम ब्रह्म सत्य।